ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 11वां अध्याय। युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव महाराज को स्वयंभुव मनु की सलाह। श्लोक संख्या 21। आयुषः अपचयम् जन्तोः तथा एव उपचयम् विभुः उभाभ्याम् रहितः स्वस्थः दुस्थस्य दुहस्थस्य विदधाति असौ आयुषोपचयं जन्तो तथैवोपचयं विभुः उभाभ्याम रहितः स्वस्थ्यो दुहस्थस्य विदधात्स्यसौ। जीवन अवधि का अपचयम ह्रास, जन्तोः जीवात्माओं का, तथा उसी प्रकार एव भी उपचयम वृद्धि, विभुः श्री भगवान उभाभ्याम उन दोनों से रहितः रहित मुक्त, स्वस्थः अपने दिव्य स्थिति में सदैव स्थित, दुःस्थस्य कर्म के नियम के अंतर्गत जीवात्मा का, विदधाति देता है, असौ वह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: श्री भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है और वे प्रत्येक को कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा चाहे अल्पजीवी हो या दीर्घजीवी, भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तात्पर्य: भौतिक जगत में एक मच्छर तथा ब्रह्मा, ये दोनों जीवात्माएं हैं। दोनों ही क्षणिक स्फुलिंग हैं और परमेश्वर के अंश हैं। अपने अपने कर्मफल के अनुसार परमेश्वर द्वारा मच्छर को अल्प आयु मिलती है और ब्रह्मा को दीर्घ आयु। किंतु ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति, भगवान भक्तों के बंधनों को घटाता है। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है, यज्ञार्थात कर्मणो नित्र, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया जाए, अन्यथा मनुष्य कर्म के कार्य कारण से बंध जाता है। कर्म के नियमों के अनुसार जीवात्मा शाश्वत काल के अधीन होकर विश्व भर में विचरण करता है, और कभी वह मच्छर बन जाता है तो कभी ब्रह्मा। बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह लाभप्रद व्यापार नहीं है। भगवद गीता में 9वें अध्याय 25वें श्लोक, जीवात्माओं को आगाह किया गया है, यान्ति देव व्रता देवान, जो देवताओं की पूजा से अनुरक्त हैं वे देवलोक जाते हैं, और जो पितरों में अनुरक्त हैं वे पितृलोक में जाते हैं। जो सांसारिक कार्यों में रहना चाहते हैं वे उसी में लगे रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति भक्ति करते हैं वे श्री भगवान के धाम को जाते हैं, जहाँ न तो जन्म है न मृत्यु, न ही कर्म के नियमानुसार विभिन्न योनियां हैं। जीवात्मा का सबसे बड़ा हित इसी में है कि वह भगवत भक्ति में लगा रहे और भगवान के परम धाम को जाए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का उपदेश है, मित्र तुम काल की तरंगों में बहे जा रहे हो, तुम यह समझने का प्रयास करो कि तुम भगवान के चिरंतन दास हो, तब सब कुछ रुक जाएगा और तुम सदा सुखी रहोगे। अनुवाद को दोहराइएगा। हे कृष्ण। तो यहां अंतर बताया हुआ है जीव आत्मा और भगवान विष्णु में। जीव सदा विष्णु के नियंत्रण में रहते हैं, उनको स्वतंत्रता केवल इच्छा की होती है, इसके अलावा कोई स्वतंत्रता और जीव की नहीं है। चाहे जीव स्वेच्छा से भगवान के शरण में रहे, या तो अगर जीव विरोध करता है भगवान के शरण में जाने के लिए तो जबरदस्ती उसे भगवान के शरण में रहना होगा, लेकिन माया के शरण में रहकर। जिस तरह से जो नागरिक सरकार के नियमों का पालन करता है वो आराम से मुक्त अवस्था में रह सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सरकार के कानूनों का पालन नहीं करना चाहता, गुनहगार बनना चाहता है, तो उसे जबरदस्ती सरकार के कानून के नीचे रहना पड़ता है, लेकिन उसके लिए अलग कानून लागू होते हैं, वो है जेल के कानून। तो दोनों अवस्था में नागरिकों को सरकार के नियमों के अनुसार रहना पड़ता है, लेकिन जो स्वेच्छा से रहता है वो मुक्त रहता है। हालांकि उसकी मुक्ति उसके स्वतंत्रता की सीमा होती है, लेकिन फिर भी जहां तक उसे आवश्यक है वो स्वतंत्र रहता है, खुश रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो जीव जो प्राणी भगवान के नियमों के अनुसार स्वेच्छा से रहता है, नियमों का पालन करता है, भगवान की सेवा करता है, तो वो नित्य सिद्ध कहलाता है। भगवान के धाम में ऐसे अनंत कोटि असंख्य नित्य सिद्ध जीव हैं जो अनादि काल से भगवान की सेवा करते आए हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। लेकिन भौतिक संसार में जीव जो हैं इनको नित्य बद्ध कहते हैं। नित्य बद्ध मतलब जो अनादि काल से इस भौतिक संसार में विचरण कर रहे हैं और भगवान के आज्ञा के विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनको बारंबार यहां जन्म लेना पड़ता है ये संसार में। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जैर गुणेर कारणम गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीव जिसका स्थान भगवान मेरी सेवा करना होता है वो खुद भोगी बनने का प्रयास करता है, अर्थात स्वतंत्र भावना से भोग करने का प्रयास करता है, तो फिर उसे ये संसार में आना पड़ता है। भुंकते प्रकृति जैर गुणे, तो ये जब इस संसार का भोग करने का, भुंकते मतलब भोगना, तो वो भोगने का प्रयास करता है तो क्या होता है, कारणम गुण संगो अस्यह, गुणों के संग में आकर उसे प्रकृति के संग में संघर्ष करना पड़ता है और बाद में सत असत योनि जन्मसु, उसे नाना प्रकार के योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में समझा रहे हैं, कभी किसी को मच्छर का शरीर मिलता है, कभी उसी जीव को किसी और जन्म में ब्रह्मा जी का मिलता है, या अलग अलग जीवों को इसी समय किसी को मच्छर का जीव, किसी को ब्रह्मा जी का शरीर। तो इस तरह से अलग अलग हमारे भोग करने की इच्छा या सेवा करने की इच्छा के अनुसार हमें अलग अलग शरीर ये संसार में मिलते हैं, लेकिन ये सब कर्म के अनुसार चलता है। और जैसे हम कर्म करते हैं वैसे अमुक प्रकार का शरीर हमें प्राप्त होता है। भगवान ने अलग अलग प्रकार के शरीर हमारे सामने टंगाए हैं, कौन सा चाहिए तुम्हें, मच्छर का शरीर चाहिए तुम्हें, शेर का चाहिए, देवता का चाहिए, इतने सारे आगे टंगाए हैं। जैसे बच्चे के सामने खिलौने टंगाए जाते हैं, या जैसे दुकान में नाना प्रकार के जो भी उनके आइटम्स होते हैं जो बेचते हैं वो टंगाते हैं, और लोग इनसे आकर्षित होकर अंदर जाते हैं, इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कीमत है। फिर जैसे उनकी कीमत, उनके जेब में जितना पैसा है, जैसे उनकी योग्यता है, वैसे वो अलग अलग चीज खरीदते हैं। आकर्षित कैसे होते हैं, देखते हैं, टंगाते हैं। तो उसी प्रकार से माया देवी की दुकान में बहुत सारे आइटम्स हैं, तुम्हें मांस खाना है तो आओ शेर का शरीर तुम्हारे लिए, देखो कितना सुंदर शरीर। तो प्राणी बोलता है हाँ मुझे ये चाहिए। तुम्हें सोना बहुत पसंद है, निद्रा, सोना बहुत चाहते हो, ये भी है मेरे दुकान में, ऐसा भी शरीर है, देखो कितना सुंदर है, भालू का शरीर, और 6 महीने सो सकते हो आराम से, कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह से अलग अलग शरीर में तुम्हें वस्त्रहीन होने का शौक है, जैसे आजकल शहरों में होता है, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा शरीर मेरे लिए है, वो है वृक्ष का शरीर। या तुम्हें ज्यादा संभोग की ज्यादा इच्छा है, ठीक है तुम्हारे लिए वही शरीर टंगाती हूं मैं, और वो कौन सा शरीर है, बंदर का शरीर, खरगोश का शरीर। तो इस तरह से माया देवी ने दुकान खोल रखा है इधर, और बिजनेस बड़ा धूमधाम बड़ा जोरदार चलता है। यहाँ कभी दुकानों में देखते हैं, कभी कभी आर्थिक परिस्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, तो लोग कहते हैं आज दुकान में धंधा नहीं हुआ, कम हुआ, आजकल सब फैक्ट्रियां डाउन हैं, मार्केट डाउन है, लेकिन माया देवी की कोई समस्या नहीं होती। माया देवी की दुकान में डिमांड इतना है, माया देवी को भी नॉन स्टॉप 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है ये भौतिक ब्रह्मांड के जीवों को संतुष्ट करने के लिए या उनके इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। लेकिन ये सब करते हुए आखिर में माया देवी इनको उल्लू बनाती है सबको। माया देवी इतनी चतुर है कि सबको मूर्ख बनाती है। जिस तरह से आजकल दुकानों में वगैरह क्या है, वो ऐसे आकर्षक बनाते हैं सब चीजों को जिससे आपको ऐसा लगे कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, इस चीज के बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, इस चीज को मेरे जीवन में होना ही चाहिए, नहीं तो जीवन में कोई रस नहीं है, आनंद नहीं है, मेरा जीवन केवल इस चीज के भोग के लिए बनाया है। ऐसे आकर्षक तरीके से दुकानों के सामने सब रखते हैं, या हमारे विज्ञापन वगैरह होते हैं। तो हालांकि उस चीज की पहले से आवश्यकता नहीं थी, हो सकता है उस व्यक्ति ने उस चीज के बारे में सुना भी नहीं हो, लेकिन आकर्षक सजावट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से उसे ये प्रेरणा दी जाती है कि आज तक तुम इस वस्तु को, इस वस्तु के बिना जिए कैसे? अभी कम से कम अभी तो ले लो, अभी जीवन सुधर जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति वो ले लेता है। तो जिस प्रकार से दुकानदार ऐसे कोशिश करता है कि नागरिकों को उसके प्रोडक्ट्स लेने के लिए, वो उसके फायदे के लिए है ना, नहीं तो उसका जीवन कैसे चलेगा? उसको चाहिए अपने आर्थिक परिस्थिति के लिए। उसको कोई चिंता नहीं है कि दूसरे लोग अच्छे दिखें, अपने आप को अच्छी तरह से सजाए धजाएं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। दुकानदार को क्या चाहिए कि अपना माल चले जाए। तो माया देवी भगवान की सेवक है, दुर्गा देवी भगवान की शुद्ध भक्त है, और ये कार्य भगवान की ओर से कर रही है। उनके दुकान में उनका काम ही ये है कि लोगों को भ्रमित करना, क्योंकि उनकी ऐसी इच्छा है। जैसे दुकान में सेल्समैन होते हैं, उनका काम है दुकानदार को जैसा करना है वैसे वो करती हैं। उसी तरह से माया देवी, ये सृष्टि तो भगवान का है, तो माया देवी भगवान की सेवक होने के नाते भगवान के प्रतिनिधित्व करते हुए सारे ये भौतिक ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं उनको भ्रम में डालती हैं। और इस माया शक्ति के प्रभाव में आकर जो है मूर्ख व्यक्ति अपने आप को चतुर समझता है, समझता नहीं है कि ये वास्तव में अज्ञान है। जड़ विद्या ए मायार वैभव, जड़ ये माया का वैभव है, ये सब जड़ विद्या अविद्या। और हम सोचते हैं कि बहुत प्रगतिशील हो गए हम, बहुत प्रगति की है हमने, विज्ञान है ये वे, लेकिन ये तो केवल माया का वैभव है। जीवे कौरे गधा, जीव को गधा बना देता है, ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। लोग कहते हैं मैंने PhD कर लिया, MA BA कर लिया, और इसलिए मैं बहुत प्रगतिशील हो गया, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन वास्तव में जब तक हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं है, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान का विकास हृदय में नहीं होता है, ये सारे BA MA PhD क्या है? केवल माया का वैभव है, केवल आदमी को गधा बना देती है, क्योंकि वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है। तो माया का काम क्या है कि जीव को गधा बनाना, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो। और जीव इतना मूर्ख हो जाता है, बद्ध जीव भौतिक संसार में आकर सोचता है कि गधा बनना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, जितना बड़ा गधा बने उतना अच्छा है। और भौतिक ज्ञान का प्रचार करते समय, भौतिक विचारों का जो भी मनगढ़ंत ढंग से अपने मन में आता है उसका प्रचार करने से ये एक प्रगति का निशानी मानी जाती है, कि जिसकी जैसी धारणा वो वैसे बोले। शास्त्रों की कोई परवाह नहीं, भगवान के वचन की कोई परवाह नहीं, संत संत लोग जो कहते हैं उसकी कोई परवाह नहीं, ये मेरा मत है इसलिए सही है, मेरे बुद्धि से मुझे लगता है कि हमें ऐसे जीना चाहिए, मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं, भक्ति की भजन की कोई आवश्यकता नहीं। तो अपने अपने दर्शन बनाते हैं, और क्योंकि ये लोग, इनके पास भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी है, थोड़ा बहुत बोलने की उनको क्षमता दी है, तो इसलिए सारे अखबारों में जो भी उपन्यास लिखे जाते हैं, सब जगह सिनेमा TV या समाज में भी जो भी आजकल लोग आगे हैं वो ऐसे ही लोग हैं जो जड़ विद्या का प्रचार करते हैं और सोचते कि हमारी विद्या है, हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत शिक्षित हैं, सुशिक्षित हैं हम, क्योंकि हमारे पास इतने डिग्री हैं, हमने इतने किताब लिखे हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, जितने ज़्यादा ये लोग ऐसे जड़ विद्या का प्रचार करते हैं जो भगवतहीन है, भक्तिहीन है, ऐसे जो प्रचार है ये केवल गधे के पुकार की तरह है। जो ज्यादा अविद्या या अज्ञान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करता है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा गधा है। उपदेश अमृत में भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तव में जो मेंढक होता है, मेंढक बहुत, उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो आवाज करे, अपना पेट फुलाकर, अपनी छाती फुलाकर वो नदी के या किसी कुंड के तट पर रह जाता है, तालाब के तट पर खड़ा होता है, और वो महिला मेंढक को आकर्षित करने के लिए अपने बेसुरे आवाज में जोर जोर से आवाज करता है, सोचता है कि मेरी आवाज कितनी मधुर है और इससे मेंढक कितने आकर्षित होंगे। और इस तरह से आवाज करता है, लेकिन कौन आकर्षित होता है? केवल सांप आकर्षित होता है। सांप आता है और सांप मेंढक को खा जाता है। तो इसी तरह से संसार में जिनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिनके पास भक्ति भावना बिल्कुल नहीं है, तो ये लोग जब शिक्षित हो जाते हैं या शिक्षित नहीं भी हो तो भी अपने मत के अनुसार सब जगह इसका प्रचार करते हैं। सोचते हैं कि मैं कितना मीठा बोल रहा हूं, कितना मैं अच्छी बातें बोल रहा हूं। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है, जो प्रवीण है, वो जानते हैं कि ये तो बिल्कुल बकवास है, इसका कोई अर्थ नहीं, कोई इसकी इसकी मूल्य नहीं है। लेकिन ऐसे बोले जाते हैं पक 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 पक, सारे अखबारों में देखिए क्या क्या अपने अपने ढंग से। आजकल एक फैशन ही बन गया है। आजकल हम मराठी हिंदी अखबारों में भी पढ़ते हैं कि लोग वैदिक सभ्यता को, धार्मिकता को, जो हमारे अलग अलग क्रियाएं हुए हैं, हमारी जो प्रथाएं हुए हैं, उनका खंडन करते हैं, उनको काटने के लिए। ऐसे कितने सारे आजकल हम आर्टिकल्स देखते हैं अखबारों में, सही बात है। आज तक तो केवल ये अंग्रेजी अखबारों में हुआ करता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि मराठी हिंदी, हमारे भारतीय भाषाओं के जो अखबार हैं उनमें भी ऐसे एक फैशन बन गया है कि कैसे हमारी वैदिक पद्धति को काट डालें, ये भगवान क्या है, ये तो केवल अंधश्रद्धा है। इस तरह से आजकल बहुत सारी चीजें अपने मनगढ़ंत ढंग से हैं। अज्ञानी नहीं जानते कि ये आध्यात्मिक ज्ञान कितना बड़ा विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान है। इसको सीखने के लिए बुद्धि चाहिए, नहीं तो इन्होंने इस ज्ञान को सीखने का प्रयास किया है, और सीखने का प्रयास किया भी है तो सही भावना से नहीं किया है, और सही भावना से भी किया हो तो सही व्यक्ति से नहीं किया है। इसलिए इस चीज को गलत समझे हैं और केवल अपने मनगढ़ंत ढंग से प्रचार करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोग क्या है, ऐसे मेंढक आवाज करते रहते हैं, केवल अपने अहंकार का विज्ञापन करते हैं, और कोई फायदा नहीं होता इससे, केवल इस मत को प्रचार करते हैं। हम देखते हैं कि आजकल फैशन बन गया है कि अलग अलग लोग अपना कॉलम लिखते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि मेरा मत ऐसे है। लेकिन भाई साहब, आपके मत की क्या कीमत है? आप कौन है? आपका जन्म थोड़े साल पहले हुआ, थोड़े साल बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। आपकी बुद्धि कितनी है? आप इन इंद्रियों से, बुद्धियों से आप क्या समझ पाएंगे संसार को? अपने खुद को, शरीर को समझ नहीं पाए, आपके जीवन को समझ नहीं पाए, संसार को समझ नहीं पाए, भगवान को, ब्रह्मांड को क्या समझेंगे आप? और फिर भी आपके अंदर इतना अहंकार है कि आप सोचते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, और भगवान को भी नकारते हैं आप। भगवान इतने सारे शास्त्र हैं जो कि हजारों सालों से बड़े बड़े संत महात्माओं से, जिनकी तीव्र बुद्धि रही है, तेज बुद्धि, शुद्ध हृदय, और ऐसा चरित्र जिसमें एक भी कण मल का नहीं है, ऐसे बड़े बड़े संत महात्माओं के लिखे हुए दर्शन को आप एक दो मिनट में किसका खंडन कर देते हैं, जैसे कि ये कुछ भी नहीं है। इतने हजारों करोड़ों सालों के सभ्यता को आप केवल, इतने अहंकारी हैं आप कि एक क्षण में इसको काट डालते हैं। तो ये केवल ये कहना चाहते हैं ये मत सही है क्योंकि ये मेरा मत है, तो अहंकार की बात है। तो वो नहीं जानते कि शास्त्र मतलब भगवान के वचन होते हैं। भगवान का वचन मतलब ये अपौरुषेय है। इसमें संसारी लोगों के मत में जो दोष होते हैं वो दोष शास्त्र में नहीं है। आदमी कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर हमेशा चार दोष रहेंगे। वो कौन से दोष हैं बता सकते हैं? नहीं, चार विशेष दोष होते हैं। एक, भ्रम में रहने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। कोई उदाहरण इसके लिए? हाँ, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, लेकिन हम हैं क्या? आत्मा। ये सबसे बड़ा भ्रम है, मूल भ्रम है। तो भ्रमित होने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। दूसरा दोष क्या है? गलतियां करना। गलतियां तो हर एक आदमी करता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो गलती नहीं करता है। तो हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है कि हम गलती कर बैठते हैं। तीसरी बात, हाँ, फंसाने की प्रवृत्ति, दूसरों को धोखे में डालने की प्रवृत्ति, धोखेबाजी, चीटिंग प्रोपेंसिटी जैसे प्रभुपाद बताते थे, धोखे में धोखेबाजी करने की प्रवृत्ति। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के समाज में भी होता है धोखेबाजी, अपने रिसर्च को, अपने संशोधन को ऐसा धोखेबाजी से करते हैं ताकि कोई वो मैगजीन में पब्लिश करें या उनको कोई पुरस्कार मिले। इतने सारे बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं वैज्ञानिकों के समाज में भी। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान, कोई वैज्ञानिक बन गया तो सब कुछ ठीक ठाक है। धोखेबाजी की प्रवृत्ति धर्म में भी होती है, विज्ञान में भी होती है, राजनीति में होती है, सब जगह। जहां इंसान है वहां धोखेबाजी की प्रवृत्ति होती है। चौथी बात, अपूर्ण इंद्रियां। उदाहरण कोई, सूर्य, क्या सूर्य, हाँ, अपने आंखों से देखा जाए तो सूर्य बहुत छोटा दिखता है लेकिन है वास्तव में बहुत बड़ा। तो अपनी इंद्रियों से हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? जब तक किसी व्यक्ति के पास ये चार दोष हैं, और कब तक रहेंगे चार दोष, जब तक ये शरीर है, ये मन है, ये रहेंगे। ये संसार का नियम है, ये चार दोष हमेशा रहेंगे। लेकिन जो शास्त्रों के वचन हैं, उनमें ये चार दोष नहीं होते। क्यों? अपौरुषेय, क्योंकि ये साधारण पुरुष के या किसी असाधारण पुरुष के भी वचन नहीं है, ये साक्षात भगवान के वचन है। और भगवान के वचन को जो जैसे है वैसे दोहराता है उसको संत कहते हैं। वास्तव में संत कोई अपनी बात नहीं बताता। ऐसा नहीं कि संत कहता मेरे मन में ऐसा है, मेरा विचार ऐसा है कि भगवान केवल इधर है उधर नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान क्या कहते हैं, इसलिए भगवान की वाणी को दोहराना यही एकमात्र संत का काम होता है। और संत जो होते हैं, जो परंपरा में आते हैं बड़े बड़े भक्त, वो केवल इस बात को दोहराते हैं और आधुनिक उस काल के लिए जैसे लोगों के समझ के लिए अनुकूल है वैसे इस ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आजकल लोगों को ऐसे प्रथा, ऐसे पारंपरिक जो ज्ञान है वो स्वीकार करने में रुचि नहीं है। वो चाहते हैं कि हम अपना ही ज्ञान बनाएं, कुछ अपने ही कोई हम निष्कर्ष पर पहुंचे और अपने नाम के पीछे कोई एक थियरी हो, हमारे नाम को कोई ऐसा नाम डाले कि ये नया ज्ञान इसने संशोधन किया है। अपना नाम, अपना अहंकार, बस इतना ही है, कोई ज्ञान नहीं है। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नसाओ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत में बताया जाता है कि जो तर्क में रुचि रखते हैं इससे कोई निष्कर्ष में पहुंच नहीं सकते। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना, और जो कहता है कि मैं शास्त्रों को पढ़कर, सारे वेद, सारे उपनिषद, पुराण पढ़कर मैं निष्कर्ष पर पहुंचूंगा, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे उपनिषद पुराण, आदमी को 24 घंटा भी पढ़ता रहे, अपने जीवन भर पढ़ता रहे, फिर भी शास्त्रों को खत्म नहीं कर पाएगा, और खत्म कर भी पाएगा तो बिल्कुल भ्रमित हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में ऐसे अलग अलग बातें बताई हैं जिनमें लगता है कि विरोधाभास है। जब तक आदमी को पूरी तरह से साक्षात्कार नहीं होता, शास्त्र को पढ़ने से भी वो भ्रमित हो सकता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनौ येन गतः स पंथा। तो वास्तव में आपको जीवन का सार क्या है, धर्म का सार क्या है, भगवत ज्ञान क्या है, अगर ये प्राप्त करना है तो ये ज्ञान हमें कहां मिलेगा? हाँ, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, ये जो गुफा हृदय है, जो महान भक्तों के हृदय में, ये ज्ञान मिल जाता है, ये सार मिल जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? महाजनों येन गतः स पंथा, जैसे महाजनों ने आदेश दिया है वैसे हमें चलना चाहिए। और ऐसे इस पथ पर चलते हुए जब हम महान भक्तों की सेवा करते हैं, उनके आदेश के अनुसार चलते हैं, तो धीरे 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 से हम भक्ति मार्ग में प्रगति करने लगते हैं। वास्तव में जो बड़े बड़े भक्तों की प्रार्थनाएं हैं ना, जैसे श्रीमद् भागवत में और उनके जो उपदेश होते हैं, वो उनकी हृदय की बात बाहर आती है। जो हृदय में धर्म का सार, जो भगवत ज्ञान का सार उनके हृदय में पड़ा हुआ है, जब वो भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं तो वही भक्ति भाव बाहर प्रकट होता है। और ये सारे रत्न है, दिव्य रत्न है, जिनको इन ग्रंथों में ये ग्रंथ क्या है, ये ग्रंथ केवल एक ऐसे जगह है जहां ये सारे अनमोल रत्नों को एक जगह में रखा हुआ है। सारे भगवान के वचन और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान को जानते हैं, जिनके हृदय में भगवान विराजमान हैं, ऐसे भक्तों के हृदय की वाणी ये ग्रंथों के माध्यम से प्रकट हुई है। इसलिए ऐसे भक्तों की वाणी भी, हालांकि ये मनुष्य के हृदय से आता है, लेकिन फिर भी ये वाणी जो है ये चार दोषों से मुक्त है, क्योंकि ये भगवान से संबंधित है और भगवान खुद उनको अंदर से प्रेरणा देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताया करते थे कि ये तात्पर्य कृष्ण ने लिखे हैं, क्योंकि साक्षात डायरेक्ट कृष्ण ने अंदर से प्रेरणा ही नहीं, साक्षात कृष्ण। एक बार जब प्रभुपाद बता रहे थे कि ये जो तात्पर्य है ये कृष्ण ने लिखे हैं, एक उनके अतिथि मिलने आए थे, तो वो अतिथि पूछने लगे कृष्ण लिखे हैं, तो उनके शिष्य साथ में बैठे थे, तो शिष्य ने कहा नहीं, प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण ने उनको प्रेरणा दी और उस प्रेरणा के अनुसार उन्होंने लिखा। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, साक्षात कृष्ण लिखा है, जैसे कृष्ण ने बोला वैसे मैं लिखता गया, ये कृष्ण की प्रेरणा की बात नहीं है, डायरेक्ट कृष्ण भगवान ने लिखा है। जैसे बलदेव विद्याभूषण जब थे, बहुत साल पहले, करीब 300 साल हुए होंगे अभी, तो वहां उधर राजा जयसिंह जयपुर में राज करते थे, और वहां रामानंदी संप्रदाय के लोग गौड़ी संप्रदाय के लोगों को की निंदा करने लगे कि ये लोग प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि इनके संप्रदाय में श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका नहीं है। अगर किसी वैष्णव